बिस्मिल्लाह कीजिए।
जी सर जी जी सर जी, मेरा सवाल कयामत से है, ये कयामत क्या है?
आहा, ये लफ्ज कयामत को गौर से देखें
जी,
क्या है इसे गौर से देखें। इसमें लफ्ज कयाम दिख रहा है आपको?
जी सर जी।
कयाम का क्या मतलब है? कायम होना
जी, होना।
अब यौमुल कयामत इस्तेमाल हुआ है कुरान में या नहीं?
जी सर जी।
यौम कहते हैं बनावट को, हालत को, एक दौर को। अब सूरत हाल यह है कि यौमुल कयामा, अब हजूर कलंदर बाबा औलिया ने बताया कि जब इंसान दुनिया से इंतकाल करके मुंतकिल हो जाता है आलमे राफ में, यानी उसके हवास की रफ्तार इतनी बढ़ जाती है कि जिस्म डिस्कार्ड हो जाता है, इंसान नहीं डिस्कार्ड होता, वो इंसान जो है वो आगे क्या करता है, उसके हवास की रफ्तारें, जब वो पटरी पे चढ़ जाता है तो वो चलता ही चला जा रहा है, हाँ या नहीं?
जी जी सर।
अब करते कराते हवास की रफ्तारें बढ़ते बढ़ते क्या होता है, अब दुनिया में गौर करें कि क्या है कि यहाँ पे हम दिन और रात के हवास में, लैल और नहार में रद्दो बदल हो रहे हैं। हम रात को सो जाते हैं यानी कि रात के हवास तारी हो जाते हैं, हम चाहें ना चाहें। हालां अल्लाह ने कहा सखर अलकुम लैल वन नहार, तुम्हारे लिए मुसखर कर दिया दिन और रात का, तुम जब चाहे दिन के हवास तारी कर लो, जब चाहे, यानी हवास की रफ्तारों के कंट्रोल अता कर दिया आपको। ठीक हो गया? जब हम आलम इराफ में जाते हैं तो वहां पे ये दिन के हवास तो होते नहीं है, वहां रूह के हवास होते हैं और नींद के हवास होते हैं, यानी के लैल के हवास और रूह के हवास रद्दो बदल हो रहे हैं। जैसे यहां दुनिया में दिन और रात के हवास में हम अदल बदल होते हैं, ऊपर जाके हम रूह के हवास और लैल के हवास में रद्दो बदल होते हैं। यौमुल कयामा के बारे में हजूर कलंदर बाबा औलिया ने किताब लौह कलम में यह जुमला लिखा है कि कयामत के दिन रूह के हवास कायम कर दिए जाएंगे, तारी कर दिए जाएंगे, वो परमानेंट हो जाएंगे, और ये जो दिन के और रात के जो हवास हैं ये भी डिलीट हो जाएंगे, और वो तकाजे जिनके इस्तेमाल का मलका पैदा नहीं किया उनको तलफ कर दिया जाएगा। यानी आपने जो अल्लाह की दी हुई सलाहियतों का इस्तेमाल नहीं किया, दिल बी डिलीटेड, ऑल दोज एप्स दैट हैव बीन इंस्टॉल्ड इन यू, इफ यू आर नॉट यूजिंग इट, you will be notified that you failed to use these apps, so they are being deleted. अब आपने अगर सारी जिंदगी में उन apps का इस्तेमाल नहीं किया, ये modern technology की language बोल रहा हूँ ना, समझाने के लिए बात को, एक बात को आपके लिए, चूंकि आप इस नई technology की term को समझ रहे हैं, तो ये असल बात इतनी सी है कि आपके अंदर सलाहियतें अल्लाह ने इंस्टॉल की हुई हैं, आपने इन सलाहियतों को इस्तेमाल करना है। इस कीचड़ हीन और तीन के दरमियान, मतलब गुजरते हुए हीन और तीन, मुख्तसर मुद्दत और कीचड़ में से गुजरते हुए आपने अपनी सलाहियतों को अगर इस्तेमाल करना सीख लिया, क्या कहा हजूर अलैहिस्सलाम ने, मौतू कबले अन तुम तमू, तो मर जाओ मरने से पहले। क्या मतलब, फक्की खा के मर जाओ?
नहीं नहीं,
मतलब फांसी दे लो खुद को, हैं?
नहीं।
या इसराइल जाके इसराइलियों के हाथों शहीद हो जाओ?
नहीं, नहीं।
कहने का मतलब ये है कि आपको उन हवास की रफ्तारों से मुतारिफ होना है जिनसे आप मरने के बाद वाकिफ होंगे, उनका इस्तेमाल अभी से करना सीख लो।
जी।
अगर आप देखे ना, हमने समझा कि कयामत हमारी जिंदगी में आएगी, मिसकंसेप्शन। क्या कि भी हम कयामत आ गई, तबाही का नाम हमने कयामत रख दिया। अल्लाह कह रहे मैं कायम करूंगा, आप कहते तबाही हो गई। आप अल्लाह के कलाम के साथ मजाक कर रहे हैं? किस दर्जे की गड़बड़ मचाई हुई है हमने कि अल्लाह एक बात फरमा रहा है कि भी मैं एक चीज को कायम करूंगा और आप कहते हैं तबाही आ जाएगी। मुझे बताइए, सोच का ये जाविया दुरुस्त है? शुक्र है, बात आपकी समझ में आना शुरू हो गई। देखें, बड़ी सिंपल सी बात है। अल्लाह रब्बे करीम एक बात इरशाद फरमा रहे हैं, यौमुल कयामा, वो हालत, वो बनावट जिसमें किसी चीज को कायम कर दिया जाएगा। मैंने आपको क्या मतलब ट्रिक शेयर किया कि लफ्ज की शक्ल देखो, उसकी जड़ तक पहुंचो, मादा पकड़ो और उसके मफाहीम पे नजर रखो। बताई गई बात पे यकीन बाद में कर लेना या ना करना वो बात की बात है, पहले देखो तो सही अल्लाह क्या कह रहे। ये जितने हमें उलझाव हैं वो बेसिकली क्यों हैं? क्योंकि हमने गिवन थॉट्स को एसोसिएट किया हुआ है अल्लाह के अल्फाज के साथ। अल्लाह के अल्फाज को जब आप अपनी फिक्र से आरास्ता करते हैं तो उसका यह हशर हो जाता है कि जो चीज मरने के बाद वकू पजीर होनी है उसको आप जिंदगी में देख रहे हैं। सैलाब आ गया, कयामत आ गई है। जलजला आ गया, कयामत आ गई। गौर करें, कयामत तो मरने के बाद, पता नहीं लाख साल बाद आनी है कि 10 लाख साल बाद आनी है। यानी आपकी रूह ने जब ये हवास की रफ्तार गेन करनी है तब कयामत होगी, यानी कि जब आपकी रूह के हवास कायम हो जाएंगे। अब मुझे बताएं ईमानदारी से, मौत बुरी चीज हुई कि अच्छी चीज हुई?
नहीं, अच्छी चीज हुई।
आप इस कीचड़ के जोन से बाहर निकल गए, अच्छी बात हुई बुरी बात हुई?
अच्छी बात है
सर। अब जब आपको तरक्की मिली और आपके हवास की रफ्तारें 36,50,000 गुना हो गई, हैं?
जी।
यू आर बीइंग एलिवेटेड या तबाही मच गई?
नहीं, एलिवेट हुए।
एलिवेट हुए। और हमने क्या तमाशा मचाया हुआ है? जब हमने इस दर्जे का खिलवाड़ किया है किसके साथ? अल्लाह के कलाम के साथ। क्या खिलवाड़ किया? कि उसमें अपने मीनिंग्स पहना दिए। यहाँ तो यह हालत है कि एक बड़े आलिम को सुन रहा था, अक्तरब सात, करीब आ गई घड़ी, व शक्कुल कमर, और सूरज चांद जो है दो टुकड़े हो गया है। उसका तर्जमा उन्होंने ये किया कि कयामत करीब आ गई। कयामत अभी तक तो आई नहीं, अभी तक तो आप जिंदा हैं, 1400 साल से तो आपकी नस्लें चल रही हैं, हाँ या नहीं?
जी सर।
क्या मतलब हुआ? डाउट नहीं पैदा होगा कुरान पे कि अल्लाह क्या कह रहा है? नहीं, अल्लाह तो जो बात कह रहा है वो आप पर हम समझे ही नहीं। अख्तर है बस सात, क्या मतलब है? घड़ी करीब आ गई, घड़ी करीब क्या मतलब आ गई है? और मौजा यानी शक्कुल कमर का मौजा हो गया। अब वो इस बहस में पड़े हैं कि अल्लाह ने किया नहीं, नबी ने किया, अल्लाह ने किया नबी ने किया, इस पे बहस हो रही है
जी।
ओ भाई, एक वाक्या हुआ है, अल्लाह आपको अपने निजाम कायनात की तरफ मतवजो कर रहे हैं
जी।
अब साथ किसे कहते हैं? वो जमानियत को कहते हैं। जब बंदा जमानियत के करीब हो गया, जमानियत में घुस गया, क्या हुआ? हजूर अलैहिस्सलाम ने चांद की रूह को हुक्म दिया, उसने अपने दो टुकड़े कर लिए। अगर चांद की रूह के दो टुकड़े कर देते तो वो जोड़ ना सकता। ये मौजा कहला रहा
है।
इशारा क्या अर्ज किया, ये मतलब क्या हुआ? आपने सवाल पूछा, मजा आ गया, इसलिए कि ये देखें, ये है वो मिसकंसेप्शन जिसका दुरुस्त होना बहुत जरूरी है। अब आज के बाद आप बताएं, आपको पता है कि एक सिस्टम चल रहा है, ठीक है, गरारियों का। आपकी उंगली गरारी में आ गई तो क्या होगा? कुछ ली जाएगी ना
जी।
और अगर आपको मशीन चलानी आती होगी तो आप क्या करेंगे? हाथ बचा के चलाएंगे ना मशीन को। बस इतनी सी बात है। अगर हमने ऐसी हरकत की कि हमारा हाथ ही गरारियों के बीच में फंस गया तो वाकई हमारे लिए तो कयामत ही आ गई ना। यह उर्दू वाला कयामत है। अरबी में कयामत तो बाद में आएगी, ठीक है। वो असल में हवास की रफ्तार है, इसलिए यौमुल कयामा कहा है। आप गौर करें ना कि हमने तो अकीमुस सलात का तर्जमा कर दिया कि नमाज पढ़ो। अब ये ऐसे ही है कि आप एक माली रखें, माली को कहें ये पौधे गमलों में लगा दो, अब वो सारा दिन इस जुमले की तिलावत करे, तजवीद करे, किरत करे, जिक्र करे, खड़ा होके गमले के सामने ये पौधा गमले में लगाना है, गाता रहे। ईमानदारी से बताएं हम क्या कर रहे हैं? अल्लाह कह रहा है अकीमू, अरबी का कायदा है जिस लफ्ज़ के आखिर में वाओ आ जाए वो हुक्मिया जुमला हो जाता है। अल्लाह कहता है ताल्लुक को कायम रखो, कायम करो, कायम करो भी फिर उसे रखो भी, ठीक है। हमने क्या कर दिया? हम पढ़ने में लगा दिया, हमें सारी कौम को, सारी कौम वो सुन सुन के सुन हुई हुई है, लिहाजा सुन्नी कहलाते हैं। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। ये तो आपने बहुत अच्छा सवाल पूछ लिया कि मुझे मौका मिल गया बात लफ्ज को आपको असल शक्ल में दिखाने का। अब आपकी मर्जी है, इसे तस्लीम करें ना करें। अल्लाह ने जो बात कह दी है वो अल्लाह की बात तो हतमी है।
जी
थैंक
यू सो मच सर जी, बहुत अच्छे से समझ आ गई। थैंक यू,
अल्लाह आपको खुश रखे जी।
थैंक यू,
दैट्स वंडरफुल। जी जनाब।
अस्सलाम
वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी
नहीं, वो पहले कोई और पूछ रही है, सवाल वो कर लें फिर मैं करूं।
जी जी बेटे आप बोले।
जी सर, एक जनरल सा क्वेश्चन है बहुत के, अभी जैसे हमारी एज और थोड़ी हमसे ज्यादा जो होती है उनको पहले डिप्रेशन, फिर एंजाइटी, फिर उसके बाद मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं, तो सर हम कहते हैं कि नहीं हमें किसी की जरूरत पड़ेगी जो हमारे इश्यू सॉल्व करे मेंटली, बट सर वेयर आर वी गोइंग रॉन्ग जो हमें ये सब कुछ फेस करना पड़ता है?
ये जर्नल सवाल नहीं है, ये जर्नल किस्म का सवाल है। ये जनरल वाला सवाल है, ये सवालों का जर्नल है। देखें बेसिकली सारा निजाम क्या है मिसकंसेप्शन का, ये डिप्रेशन, ये स्ट्रेस, ये एंग्जाइटी, ये जो तवक्कुआत हम रखते हैं इनके नतीजे में क्या होता है? तवक्कुआत पूरी नहीं होती, तो कहीं हम डिप्रेस हो जाते हैं, कहीं हम सप्रेस हो जाते हैं, कहीं हम स्ट्रेस में चले जाते हैं, कहीं हम एंग्जाइटी का शिकार हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ आवर एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस, आप इसको एक्स कर दें तो ये सिर्फ पैक्ट रह जाएगा, यानी देखें जब तक इंसान वो वाहिद मखलूक है जो अपनी औलाद से तवक्कुआत रखती है, हाँ या नहीं?
जी सर।
कोई चिड़िया जो अपने बच्चों को चोगा देती है, क्या ये सोचती है कि कल को जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी मेरे परों में ताकत है, परवाज नहीं रहेगी, मैं कीड़े मकोड़े पकड़ के नहीं खा सकूंगी, तो मेरे बच्चे मेरे लिए कीड़े पकड़ के ला के मुझे चोगा देंगे, कभी सोचती है?
नहीं सोचती सर।
आपको कैसे पता? शाबाश, देखे ना, अब कोई शेरनी जो बच्चों के पहले उन्हें दूध पिलाती है, फिर उनके लिए शिकार मारती है, उनको शिकार करना सिखाती है, उसके बाद क्या वो तवक्को रखती है कि जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तो मेरे बच्चे शेर जो बनेंगे ये मेरे लिए शिकार मार के लाएंगे, क्या वो नहीं ला सकते? लेकिन क्या वो लाते हैं? कहते नो, ठीक है। अब आप इसको जंगल का कानून कहते हैं, ठीक है, लेकिन ये नेचर है। हम चूंकि नेचर के अगेंस्ट चलते हैं, तवक्कोआत रखते हैं, लिहाजा स्ट्रेस, लिहाजा एंग्जाइटी, लिहाजा स्ट्रेन, लिहाजा डिप्रेशन, ये सब चीजें क्यों आई? तवक्कोआत। अगर आप तवक्कोआत तोड़ दें, फकीरी में ये सबसे बड़ा लेसन है, इसीलिए मैंने कहा ये जर्नली सवाल है, ये सवालों का जर्नल है, बुनियादी बात है, ये कोई जर्नल क्वेश्चन नहीं है, ये बेसिक क्वेश्चन है, और बहुत बड़ा सवाल आपने पूछ लिया, ये बहुत जरूरी है, ये हमारा फ्रेम ऑफ माइंड, हमारा जो माइंड सेट है ना
जी,
वो किस पे बेस है? मुआशरती निजाम। मुआशरती निजाम ने क्या किया, हमें एक दूसरे से तवक्कोआत के जोर से बांधा हुआ है। और करें, मुआशरती निजाम का ग्लू क्या है? तवक्कोआत। पूरे मुआशरती निजाम में जो एक दूसरे से हम चिपके होते हैं, ये असल में क्या, ये ग्लू क्या है? तवक्कोआत। भाई बच्चा टीचर से पढ़ रहा है, उसको तवक्को है कि उसको इल्म देगा? टीचर बेचारा खुद जाहिल है, वो कहां से इल्म दे? हैं? बच्चे की तवक्को है कि मां बाप सारा कुछ करें मेरे लिए? भाई बच्चे की अपने भी तो कोई फराइज है ना, फराइज की तरह हमें ने किसी ने मतवजो किया
नहीं।
जब आप अपने फराइज में कोताही कर रहे हैं तो क्या होगा? गिल्ट का एहसास पैदा होगा या नहीं? एहसास जुर्म। अब एहसास जुर्म के साथ आप खुश कैसे रह सकते हैं? क्योंकि आपके लाशौर को तो पता है कि यू आर कमिटिंग अ ब्लंडर। भाई मैं अपने फराइज अदा नहीं कर रहा तो चले, लोगों को नहीं शऊर, मुझे शऊर नहीं है, मेरे लाशौर को तो पता है ना कि आई एम कमिटिंग अ ब्लंडर। भाई बाय नॉट परफॉर्मिंग माई ड्यूटीज, बाय नॉट मीटिंग माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज, व्हाट आई एम डूइंग? क्यों जी? मतलब ये कि फिर ऊपर से तवक्कोआत भी रख रहा हूं, हैं? जब मैं अपना फरीजा पूरा नहीं सर अंजाम दे रहा तो मैं अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल नहीं कर रहा ना। ये अभी जो पहले बात हुई यौमुल कयामा की, तो उसमें मैंने क्या अर्ज किया? जिन सलाहियतों का मलका हासिल नहीं किया, जिन तकाजों की तकमील का आपने कमांड हासिल नहीं की, वो डिलीट कर दिए जाएंगे। तो मुझे बताएं, अगर आपने एक दुनिया में अपनी किसी सलाहियतों, कुछ सलाहियतें हैं, उनको इस्तेमाल नहीं किया तो ऊपर जाके वो डिलीट हो गई, तो आपका कद कितना रह जाएगा? अब 11,500 सलाहियतों में से आपने सारी जिंदगी 10 सलाहियतें इस्तेमाल की। अब दूसरा बंदा है जिसने 100 इस्तेमाल की, एक बंदा है जिसने 1,000 सलाहियतें इस्तेमाल की, अब एक है जिसने 5,000 सलाहियतें इस्तेमाल की। अब आप जरा इनके तनासुब से उसका कद काठ बनाएं। अब जो 10 सलाहियतों वाला बंदा, वो कितना बौना सा होगा, छोटा चींटी जितना, और जिसने 1,000 सलाहियतें इस्तेमाल की, उससे 1,000 गुना बड़ा हुआ क्या? नहीं, 100 गुना तो बड़ा हुआ ना
जी।
और जिसने 5,000 इस्तेमाल की, वो कितना बड़ा हुआ? ये है वो बड़ापन, क्या कहते हैं ना फलाना बहुत बड़ा बुजुर्ग है। एक तो बड़ा और ऊपर से बुजुर्ग, बुजुर्ग का मतलब ही बड़ा है वैसे भाई।
जी सर।
एक तो बड़ा और ऊपर से बुजुर्ग, अल्लाह माफ करे हमें है? और पता नहीं है कि क्यों किसी का हम बुजुर्ग मानते हैं, क्योंकि उसने हमसे बेहतर सलाहियतें अपनी इस्तेमाल की हैं, लिहाजा आप उससे खाइफ भी होते हैं, मरूब भी होते हैं, हाँ या नहीं? जो बंदा भी अपनी सलाहियतों का बेहतर इस्तेमाल करता है, आप उसको क्या देखते हैं? आप उससे मरूब होते हैं,
सर बड़ा ही समझते
हैं
जी।
हाँ हाँ, आप उसके रोब में आ जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो अपनी सलाहियतों का बेहतर इस्तेमाल कर रहे हैं। अब अगर कोई खातून उठती है और वो मतलब है कि नौकरी कर रही है, अचानक उसके जेन में अल्लाह एक बात डालता है और वो 1,200 बच्चे अडॉप्ट करके उनको, उनके लिए मेहनत करती है और उनको पालती है, उसकी वीडियो वायरल हो जाती है और जनाब दुनिया हैरान हो रही है, क्या कर रही है वो? अपनी सलाहियत का इस्तेमाल कर रही है, हैं?
जी सर।
गौर करें
जी,
सलाहियतों का इस्तेमाल, क्या हुआ? वो बड़ी नजर आई आप के मुकाबले में, जिन खवातीन ने अपनी सलाहियत को इस्तेमाल नहीं किया, वो अपने आप को छोटा देख रही हैं, उसके मुकाबले में उसकी वीडियो देख रही हैं और खुद को कंफ्यूज, मतलब क्या हो रहा है, गिल्ट पैदा हो रहा है ना
जी,
क्या कि मैंने क्यों नहीं किया ये। तो ये जो आपने सवाल पूछा, ये इतना अहम सवाल था कि मैंने आपसे कहा कि ये सवाल जनरल क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन का जर्नल है। ये बहुत बेसिक बात है। देखें, सारे मसाइल की जड़ क्या है? तवक्कुआत। तवक्कुआत कब? जब हम अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल नहीं करते और समझते हैं दूसरे हमारे लिए अपनी सलाहियतें इस्तेमाल करें। सदके जाऊं। ठीक हो गया? मोस्ट वेलकम जी।
अस्सलाम वालेकुम सर।
जी वालेकुम अस्सलाम।
सर एक लफ्ज़ है, नफ्से मुतमईना।
जी हाँ।
जिसका जिक्र कुरान में भी आया है।
जी हाँ।
एक आयत है जिसके अंदर अल्लाह कहते हैं नफ्से मुतमईना पलटो मेरी तरफ। ये नफ्से मुतमईना है क्या?
नफ्स कहते किसे? इसी से अगर मैं कहूं कि आप जरा गौर करें, लफ्ज आपने तनफ्फुस सुने? तनफ्फुस क्या है? सांस लेना। तो नफ्से मुतमईना क्या हुआ? वो जो इत्मीनान से सांस ले।
जी जी जी।
साफ लिखा हुआ है, नफ्से मुतमईना का मतलब हो गया। पार्डन, मैं उसकी वही तो अर्ज करने लगा हूँ, आप जरा मेरी इजाजत तो दें बात कहने की।
Sorry, sir,
नहीं नहीं, देखें बात ये, ये पूरी आयत पे जरा नजर डालें। या अय्यातो, या अय्यातो हन नफ्से मुतमाइना उर्जी इला रब्बे का राजियतिल मर्जिया, ए इत्मीनान से सांस लेने वाली हालत को आप क्या कहेंगे? इत्मीनान से सांस लें जरा आप। इस हालत में आप अपने रब की तरफ रजू करें इस तरह कि आप उससे राजी हो, आपको आप अल्लाह के किए हर काम पे आप राजी हो। हम अल्लाह के किसी काम पे राजी हैं? हमें तो फुर्सत ही नहीं है अल्लाह को डिक्टेशन देने से, ये कर दे ये मत करना। और कहते क्या हैं? हम तो दुआ कर रहे हैं, आपने बड़ी शफकत फरमाई के लफ्ज मशवरा इस्तेमाल किया, मैं कहता हूँ हम तो हुक्म दे रहे हैं। अल्फाज हमारे आजिज़ाना होते हैं लेकिन अंदर छुपी हुई कमांड होती है।
सर क्या कहते हैं, इमाम हुसैन के साहब आते हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन।
जी जी।
उनकी एक दुआ है जिसके अंदर वो कहते हैं अल्लाह से दुआ मांगते हुए वो ये कहते हैं कि अल्लाह मैं कौन होता हूँ دینے والا, تو وہی کر جو میرے حق میں بہتر ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یہ وزڈم, یہ فراست ہم میں کیوں نہیں ہے؟ ہم یہ دعا کیوں نہیں کرتے؟ ہم حضرت امام زین العابدین کا تذکرہ کر کے محفلیں برپا کرتے ہیں, دھاڑے مار کے روتے ضرور ہیں, لیکن ان کی یہ سوچ کیوں نہیں اپناتے؟ عمل کھا گیا سر. اصل چیز ہے سوچ کو فالو کرنا. اب اس دعا سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہے امام زین العابدین کا ذہن کس طرح سوچتا ہے؟ وہ اللہ والوں کی طرح سوچتے تھے. کیا کہا انہوں نے کہ اے اللہ جو تو بہتر سمجھتا ہے وہ کر. غور کریں. اب یہ بات کون کہے گا جو اللہ سے راضی ہے؟ الراضیات المرضیہ, پھر اللہ تم سے راضی ہو. غور کریں. اب یہ آیت پوری واضح ہو گئی. دیکھیں نا, جب آپ اللہ کے کیے پہ راضی ہیں اور اللہ آپ سے راضی ہے, اب جو آپ سانس لیں گے آپ کا نفس ہوگا, جو تنفس چلے گا, نفس اس کو کہتے ہیں نا جو سانس اندر سے دلا رہا ہے آپ کو. نفس کیا کر رہا ہے؟ یہ سانس کون دلا رہا ہے آپ کو؟ آپ خود لے رہے ہیں. میں نے کہا جی اگر آپ نفس کو سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ ایک, دیکھیں آپ کے اندر جو اصل انسان ہے وہ آپ کا مادی نظام, مادی جسم کا نظام چلا رہا ہے, ہاں یا نہیں؟ اب یہ اصل انسان جو ہے اگر وہ مطمئن ہے تو کیا کرے گا؟ وہ رجوع کرے گا, اور جی میری طرف رجوع کر, اور جی یہ جی الہ رب کا, اپنے رب کی طرف, راضیت المرضی, اس طرح کہ تو اس سے راضی ہو. اب ہم یہ جو آپ نے حضرت امام زین العابدین کی بات کوٹ کی, یقین کریں دل خوش ہو گیا. یعنی یہ ہے اصل اپروچ, یہ ہے اصل اللہ والوں کی طرز فکر جس کا پرچار یہ فقیر کر رہے ہیں. فقیر کیا کہہ رہے ہیں؟
سر سننے میں آئے کہ یہ آیت جو ہے امام حسین علیہ السلام نے شہادت کے وقت جب ان کی شہادت ہو رہی تھی تو یہ ندا کے خدا کی طرف سے یہی آئی تھی کہ اے نفس مطمئنہ پلٹا میری طرف.
ہو سکتا ہے, یہ مجھے نہیں پتا. دیکھیں بات یہ ہے, یہ جو بات اس میں میں توجہ دلانے لگا تھا, ہمارے ہاں اس کو کیوں پڑھا جاتا ہے یا ایوہ نفس مطمئنہ؟ نہیں نہیں نہیں, اس میں کیا لفظ ہے میں نے پڑھا یا ایا, تو ایک نشانی یہ ہے کہ آپ اس وقت سانس اطمینان سے لے رہے ہوتے ہیں. ذرا غور کریں, جب تک آپ کا ذہن شانت نہیں ہوگا, سکون میں نہیں ہوگا, اندر سے آپ اللہ کے کیے پہ راضی نہیں ہوں گے, آپ کا سانس اطمینان سے نہیں چل سکتا. اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ سم تھنگ از رانگ, سم تھنگ از رانگ. آپ یہ جو سانس کی اتھل پتھل ہے یہ اصل میں جذبات کی کیفیت کی علامت ہے نا, جب آپ جذبات سے اوپر اٹھ گئے تو سانس کیسا چلے گا؟ جذبات میں سانس کیسے چلتے ہیں؟ جی ہاں, پریکٹس نہیں ہے نا, سانس لینے کی مشق نہیں کی آپ نے. میں کیا عرض کرتا ہوں کہ ہر وقت سانس پورا لو. جب آپ سانس پورا لیں گے جسم میں آکسیجن کی مقداریں پوری ہوں گی, جب آپ چلتے ہیں آپ کو آکسیجن کی ضرورت پڑتی ہے, اس وقت وہ دھونکنی کی طرح آپ چلا رہے ہیں. ہیں اگر آپ سارا دن سانس پورا لیتے رہیں گے بدن میں آکسیجن کی مقداریں پوری رہیں گی تو آپ کو چلنے میں سہولت رہے گی, آپ کا سانس نہیں پھولے گا.
ٹھیک ہے سر,
شکر الحمدللہ. मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम जी। और कोई सवाल? मैं माफी चाहता हूँ, जरा बात को दोबारा फरमा दें, बात बीच में
सिग्नल। एक मिनट
जी,
दोबारा मैं उस टिप को ओपन करके फिर मैं आपसे पूछती हूँ, तो समझने से ही आएगा।
जी और कोई बात कर लें इतनी देर में जब तक वो तलाश करते हैं। जी
सर।
जी वालेकुम सलाम।
सर कुरान शरीफ में लिखा है कि अल्लाह जिसे चाहता है अपना फजल अदा करता है।
जिसे चाहता है
फजल, अपना फजल अदा करता है, फजल।
जी जी जी।
तो फजल किसे कहते हैं, अल्लाह की रहमत या फजल?
ये लफ्ज फजल आपने, जी मैं अर्ज कर, जी मैं अर्ज करता हूँ। देखें आपने ये तरीका वारदात देखा है मेरा, मैं क्या कहता हूँ कि लफ्ज़ की असल शक्ल को देखो। अब फजल का असल मतलब, आपने एक फाजिल लफ्ज सुना होगा, फाजिल से ही आगे एक लफ्ज है फजला।
अच्छा,
क्या मतलब हुआ? यानी एक चीज जो इजाफी हो जाए। फजल का मतलब है जो आपकी कैपेसिटी से ज्यादा चीज होगी वो फजल कहलाएगी। मतलब जो आपकी जरूरतें हैं अल्लाह पूरी कर रहा है ना। अगर आप चाहते हैं कि भाई अल्लाह का फजल, आप तो घर बनाते हैं वो जैसे तैसे भी, उसके ऊपर लिख देते हैं हाजा मिन फजल रब्बी, यानी कि मुझ पे इजाफी, कोई इजाफी। फाजिल का मतलब इजाफी, यानी कोई चीज जो इजाफी तौर पे हो। अब मुंशी आलिम फाजिल, एक तो आलिम हो गया ऊपर से फाजिल हो गया, यानी कि वो एक्स्ट्रा चीज, एक्स्ट्रा। यानी अब एक चीज क्वालिटी में बेहतर हो गई, ये भी फजल है, हाँ या नहीं? मतलब है आप एक गिलास दूध का ले रहे हैं, अब उसमें पानी मिला हुआ है या नॉर्मल दूध है, और एक जरा गाढ़ा दूध है, उसको उबाल के आपने उसका जरा क्या कहते हैं खोया बना दिया तकरीबन, ठीक है, उसमें से पानी कम कर दिया तो दूध की मकदार ज्यादा हो गई, तो ये क्या हुआ, दूध फाजिल हो गया। एक आलिम होता है, एक फाजिल होता है। अब क्लियर हो गया कि फजल से क्या मुराद है, यानी जो अल्लाह अता कर रहा है, आप कह रहे हैं कि इसे और बेहतर अता कर।
अच्छा ठीक है, जिसे अल्लाह चाहता है उसे अपना फजल।
जी यानी अल्लाह अपना करम करे, अल्लाह का करम, करम भी यही फजल है। अल्लाह की हर बात जो हमारी कैपेसिटी से ज्यादा है उसका फजल कहलाती है। देखे ना, मेरा पांडा छोटा है, ठीक है, अल्लाह रब्बे करीम उसे लबालब भर रहा है, मेरा गुजारा आधे में भी हो रहा है, लेकिन अल्लाह ये कहते नहीं पूरा ले, तो ये क्या हुआ, फजल हो गया। क्लियर हो गई ना बात? मैंने क्या आपको एक तरीका सिखाया कि लफ्ज की शक्ल नहीं, उसका मादा, उसकी जड़ पकड़े, और जड़ से पकड़ेंगे तो वो बिल्कुल सही समझ में आएगा।
ठीक है सर। और अल्लाह की रहमत भी यही है सर?
नहीं, लफ्ज रहमत जो है ये रहम से बना है, और रहम किसे कहते हैं, जाहिर है मादर रहम, रहम मादर, यानी तखलीकी निजाम का चलना, तसलसल हयात को रहमत कहते हैं। हयात का तसलसल, देखें आपकी सांस चल रही है, अगर एक के बाद दूसरी सांस ना आए तो क्या होगा? ये हयात का सिलसिला मुनकते हो जाएगा कि नहीं?
जी,
अब इसकी मजीद बारीकियां देखें। मजीद बारीकी ये है कि ये जो एक सेकंड में मैं बात कह रहा हूं, अगर इसका रिकॉर्ड महफूज ना रहे तो अगले सेकंड में ये बात क्या होगी? खत्म हो जाएगी। इसी तरह बच्चा जब पहला सांस लेता है, अगर उसके पहले सेकंड का रिकॉर्ड मौजूद न रहे तो अगले सेकंड में वो मुंतकिल नहीं हो सकता। ये जो तसलसल है रिकॉर्ड का, इसको रहमत कहते हैं। गौर करें, ये जो तसलसले हयात, मैंने लफ्ज अर्ज किया, हयात में, जिंदगी में ये जो तसलसल है, यानी एक सेकंड दूसरे सेकंड से जुड़ा हुआ है। आपका एक सेल दूसरे सेल के साथ जुड़ा हुआ है। अल्लाह का पूरा निजाम इस सवाल से, इन्नल्लाह व मलाइकत यसल्लून अलन नबी, यसल्लून, दोनों जुड़े हुए हैं इस एतसाल को। क्या कहा? मा अरसलना का इल्ला रहमतुलिल आलमीन। कायनात के पूरे निजाम के तसलसल को कायम रखने के शोबे का इंचार्ज बना दिया हजूर अलैहिस्सलाम को। खालिके कायनात अल्लाह, रब्बुल आलमीन अल्लाह, रहमतुलिल आलमीन सरकारे दो आलम में। क्लियर हो गई ना बात?
बिल्कुल,
इट्स माय प्लेजर जी। जी जी, वालेकुम अस्सलाम
सर। मेरा सवाल है कि जब हम ये कहते हैं कि कायनात हमारे अंदर है, फरिश्ते जिन्नात हमारे अंदर है, अर्शे हमारे अंदर, तो सर इससे क्या मुराद ये है कि शेख का वकूफ हमारे अंदर है, शेख बताते खुद हमारे अंदर?
शेख कैसे हमारे अंदर हो सकती है? सारा शेख खुद हमारे इनर के रिकॉर्ड का अक्स है। शेख क्या है? इल्म शय का इजहार शय। तो आपके अंदर क्या हुआ? इल्म शय हुआ कि शय हुई? देखें, आसान हो गया ना। हजूर कलंदर बाबा ने हर बात की इतनी वजाहत की है कि अगर हमारा जहन उनकी तालीमात की को अपनी गिरफ्त में ले ले तो हर बात का जवाब हमें वहीं से मिल जाता है।
सही।
अब आपने कहा कि हर चीज हमारे अंदर है, हमारे अंदर इल्मे शय है।
इल्मे शय है, सही।
उस इल्म का इजहार जब बाहर हो रहा है तो वो शय कहला रही है
जी।
अब जब बाहर हो रहा है तो वो अंदर कैसे हो सकती है?
नहीं हो सकती।
भाई जो चीज अंदर है उसका मतलब है, अब आप कहें कि भी तुम इसे बाहर, अब बाहर की चीज अंदर कैसे जा सकती है?
नहीं जा
सकती। इल्मे शय आपके अंदर है।
सही।
क्लियर हो गई बात एक ही जुमले में? झाड़ू फिर गया। जाले हट गए।
सर ज़ौक क्या है? ज़ौक क्या फासले का पाबंद है?
हरगिज नहीं। ज़ौक कहते किसे? क्या कहा? अगला जुमला भी तो पढ़े ना, कि ये तलाश में सरगर्दा रहता है, इसलिए नहीं कि उसे कुछ मिलेगा। बस ये उसकी तबीयत का तकाजा है। ज़ौक क्या है? तबीयत का तकाजा। क्या लफ्ज इस्तेमाल किए हैं हजूर कलंदर बाबा औलिया ने। आप एक एक लफ्ज को सराहें, کیا کہا؟ یہ نہ فاصلوں کا پابند ہے، ایک ستارے سے دوسرے ستارے تک اور سوئی کے روزون سے کا فاصلہ، اس کے لیے ایک ہی معنی رکھتے ہیں، کہا کہ نہیں؟ شوق جو ہے، کہا کہ یہی انسان کی بنا ہے، اسی کو لائف سٹریم کا ہے. اب لائف سٹریم تو یہ اصل ذوق تو یہ ہے، لیکن ہمیں نہ لائف کا پتہ ہے، نہ اس کی سٹریم کا پتہ ہے، نہ اپنی بنا کا پتہ ہے. اتنی بڑی بات کہ ذوق ہی اصل انسان ہے. انسان کیا ہے؟ ذوق. ذوق کی یہ ڈیفینیشن میں نے اس سے پیشتر یہاں قلندر بابا علیہ کی اس کتاب یہ مکتوب میں پڑھنے سے پیشتر کبھی نہیں سنی تھی، نہ پڑھی تھی. یقین کریں کہ آج تک میں اس کیفیت کا لطف لے رہا ہوں جو اس بات کو سمجھنے پہ مجھے حاصل ہوئی ہے، اور میں بس ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اتنا کرم کیا ہے کہ ایک بات واضح کر دی. بڑا ہی کرم ہو گیا ہم پہ.
سر یہ مل گیا سر، ایک بار وہ لکھا ہوا ہے تفکر کیا ہے؟ تشکری حواس کو سماعت اور بصارت دیتا ہے. سمجھا جاتا ہے کہ حواس تفکر ہے اور کوئی الگ چیز ہے.
جی جی بات یہ ہے. جی جی بس میں سمجھ گیا ہوں. جی جی میں عرض کرتا ہوں. جی میں عرض کرتا ہوں، یہ تاج الدین بابا اولیاء کا کال ہے. جی دیکھیں، انہوں نے فرمایا کہ حواس تفکر کے بغیر گنگے بہرے ہیں. اگلا جملہ یہ، کیا حواس تفکر کے بغیر گنگے بہرے ہیں؟ ذرا اس پہ رک جائیں اور اس کو سمجھیں. مثلا میں ابھی عرض کرتا ہوں، ابھی آپ کی سمجھ میں پوری طرح آ جائے گا. ٹھیک ہے، اب آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا جس کرسی پہ. دیکھیں میں نے جب بولا کہ جس کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک دم آپ کو نیچے سے کرسی فیل ہوئی.
جی سر.
یہ حواس گونگے تھے، کیا تھے؟ بہرے تھے. کیا تھا؟ کیا آپ کرسی پہ براجمان ہیں اور احساس نہیں تھا؟ جو ہی میں نے لفظ تفکر یعنی میری فکر نے آپ کو متوجہ کیا، اب دوسری بات، آپ کے پیر زمین پہ پڑے، زمین پہ رکھے ہوئے نا آپ نے پاؤں، زمین کا احساس تھا. میرے بولنے سے پہلے کہیں احساس تھا؟ جو ہی میں نے آپ کو متوجہ کیا، آپ کو اپنے پیروں میں جوتی کا ہونا نہ ہونا پتا چل گیا، محسوس ہوا آپ کو. ایک لفظ بولنے کے ساتھ کیا ہوا؟ آپ کی فکر میں ایک بات لہرائی. ورنہ حواس کو اطلاع دے رہے تھے جوتی کی، کرسی کی، آپ کے بدن پہ کپڑوں کی، آپ کے کانوں میں پہنی بالیوں کی کوئی اطلاع تھی؟ بولتا جا رہا ہوں وہ حواس میں آتے جا رہے ہیں، کیا مطلب ہوا؟ حواس تو گونگے بہرے تھے، تفکر نے توجہ دلائی. غور کریں. اب واضح ہو گیا اب کہ سارا کھیل توجہ کا ہے. سب میں ہوتی ہیں. بات یہ تینوں تفکر کے پیٹرن ہیں، تینوں تفکر ہیں. تفکر کہتے ہیں سوچ کے مجموعے کو یا سوچ کو. ٹھیک ہے، اب ایک قسم کی سوچ ہے جو نور میں قید ہے، پا با نور. اس سے اگلا جملہ یہ ہے کہ یہ فرشتہ ہے، تفکر ہے، جنات بھی تفکر ہیں، انسان بھی تفکر ہے. کہا کہ فرشتہ جو ہے یہ پا با نور ہے، نور پا با نور، اس کے پیر نور میں بند ہیں، پا با نور، نور میں بند ہیں. وہ تفکر کی وہ قسم ہے جو نورانیت رکھتی ہے اپنے اندر. جنات وہ تفکر ہیں جو پابا ہیولا ہیں، یعنی وہ ہیولے میں قید ہیں، اور انسان پابا گل ہے، یعنی مٹی میں قید تفکر ہے. اب مٹی کیا ہے؟ رنگوں کا مجموعہ. مٹی کیا ہے؟ رنگوں کا مجموعہ. ایک خلا ہے جس میں رنگ بھر دیے، لہذا اب وہ تفکر جو اس خلا میں بند ہو کے کھیل رہا ہے اس کو انسان کہتے ہیں، وہ تفکر. اب یہ جنات ہو گئے، فرشتہ ہو گئے، یہ تفکر یعنی فہم رکھتے ہیں، سمجھ رکھتے ہیں. تشکر جو ہے وہ شکر کرنے کو کہتے ہیں، شکر کا مطلب ہے اپنی صلاحیتوں کا استعمال. اللہ رب کریم نے کہا نا کہ میں نے داؤد اور سلیمان ان کو حکمت عطا کی اور انہوں نے شکر ادا کیا، یعنی کہ میں نے ان کو حکمت عطا کی، یعنی بات کو سمجھنے کا سلیقہ عطا کیا اور انہوں نے اس کو استعمال کیا. ہم نے کہہ دیا وہ اب کمرے میں بند ہو کے، یا اللہ تیرا شکر ہے، 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 یہ کرتے رہتے تو اللہ میاں اس طرح تذکرہ کرتے؟ کیا کیا انہوں نے؟ جو صلاحیت اللہ رب کریم نے ان کو عطا کی تھی اس کو استعمال کر کے دکھایا. ٹھیک ہے، ان صلاحیتوں میں سے ایک صلاحیت ہے حکمت. حکمت کیا ہے؟ حکمت ڈائیگنوز کرنے کو کہتے ہیں. آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ کوئی بات کیوں ہو رہی ہے. حکیم کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے آپ کا یہ مرد، اس کی وجوہات کیا ہیں، کہتا ہے یا نہیں؟ وہ کہتا ہے بھئی آپ کے دیکھیں نا، حکمت کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں چار مزاج ہیں، گرمی، سردی، تری اور خشکی. وہ بتاتا ہے کہ آپ کا مزاج میں گرمی بڑھ گئی ہے، خشکی بڑھ گئی ہے، تری بڑھ گئی ہے، یا کیا ہے چوتھی چیز میں بھی بولا ہوں، یعنی کہ یہ خشک اور تری، گرمی اور سردی. ہاں گرمی، گرم کہتے ہیں نا، بعض مزاج گرم ہوتے ہیں، بعض ٹھنڈے ہوتے ہیں، بعض تر ہوتے ہیں، بعض خشک ہوتے ہیں. یہ خشکی، تری اور یہ ٹوٹل چار چیزوں کا وہ کمبینیشن، اس کی گڑبڑ کا نام ہے بیماری. یہ حکمت کے مطابق، طب یونانی کے مطابق. ٹھیک ہو گیا؟ اب ڈائیگنوسس کا نام ہم نے حکمت رکھا، یعنی حکیم کیا کرتا ہے؟ تشخیص کرتا ہے. اب یہ اس کے آگے علیحدہ علیحدہ ہنر ہیں کہ وہ نبض دیکھ کے کرتا ہے، آپ کا کارورا دیکھ کے کرتا ہے، یا زبان دیکھ کے کرتا ہے، یا آنکھیں دیکھ کے کرتا ہے.
نہیں، جیسے ہم کبھی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر ہم سے نا مطلب ہماری یہ سے بھی پوچھتے ہیں کہ آپ کے والد کو شوگر نہیں تھی، آپ کی والدہ کو تو.
جی ہاں، اب یہ جو ہے یہ وہ تشخیص کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، تشخیص. یعنی
تو اس سے فرق پڑتا ہے سر، میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں، اس سے فرق پڑتا ہے کیا؟
کس سے؟
شوگر
اگر آپ کا یقین کا پیٹرن یہ ہے کہ آپ ماں باپ کی نقل کرتے ہیں تو پھر تو ضرور ہوگی. اگر پیٹرن یہ ہے، اگر آپ سانس پورا لیتے ہیں، پانی آرام آرام سے پیتے ہیں، کھانا چبا چبا کے کھاتے ہیں، تو آپ کو کچھ نہیں ہوگا. یہ میرا یقین
ہے.
یہ ڈاکٹر حضرات جو ہے نا، وہ اپنا دیکھیں، ان کا اپنا ایک کاروبار ہے، ان کا ایک اپنا پیشہ ہے، اپنا ایک شعبہ ہے، ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہے. حکیموں کا اپنا ہے، ہومیوپیتھس کا اپنا ہے، ہر قسم کے شعبے ہیں نا. اب کتنے نظام ہائے علاج ہیں، ہر نظام ہائے علاج، جتنے بھی علاج کے نظام ہیں، تھراپیٹک سسٹم جو ہیں، اب ایلوپیتھی بھی اس میں ایک سسٹم ہے، ہومیوپیتھی بھی ہے، آیورویدا بھی ہے، طب یونانی بھی ہے، اسی طرح अब चाइनीज जो हैं वो आपको पंक्चर से इलाज करते हैं, वो कहते हैं आपके अंदर 10 रोएं बह रही हैं, उनमें गड़बड़ हो जाती है, वो पिन मार के सुई चुभो के वो उसको करंट के फ्लो को जारी कर देते हैं, उससे लोग ठीक भी हो जाते हैं। ये सारा मैं भी यही अर्ज कर रहा हूँ, निजाम इलाज, मैंने लफ्ज तरीका इलाज तो बाद में आता है ना, पहले निजाम की बात आएगी। अब एंटी, ये जो आपके एलोपैथी है इसका बुनियादी फलसफा ये है कि लुई पास्चर एक साहब गुजरे, उन्होंने कहा जी जरासीम होते हैं और वो बीमारी की वजह बनते हैं, ठीक है। वहां से आपने लोगों को एंटीबायोटिक्स देना शुरू कर दी कि ताकि जरासीम मरे, पेंसिलिन देना शुरू कर दी, आजकल आप माइसिन्स देते हैं, ये एक निजाम इलाज है, वो ठीक है, अच्छा है, बुरा है। हर दवाई के साथ आप पर्ची खोलें, बोतल में से साथ एक पैम्फलेट निकलता है ना जिसमें लिखा होता है ये दवाई क्या है, तो उसके अंदर एक चीज लिखी होती है साइड इफेक्ट्स, आप गौर करें, इतना बारीक लिखा होता है मेरे जैसा तो कोई बंदा पढ़ ही ना सके ताकि कल को कोई उनपे केस ना कर दे कि भाई तुमने मुझे ये नुकसान नहीं बताया। वो कहते हैं जी हमने तो छाप के दिया, आपके हाथ में दिया, आपको फिर भी नहीं पकड़ा जाता, तो आप नहीं समझ रहे तो जो मर्जी करें, आपने क्यों नहीं पढ़ के इस्तेमाल किया। बहरहाल ये छोटी बातें अलग हैं जी, और ऐसी जबान में लिखते हैं जो आपको समझ ना आए, ये जहालत ही हमारी सजा है।
जी सर जी।
इसी को दूर करने की काविश करना अल्लाह ने फर्ज किया है। हजूर अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, इल्म हासिल करो खा तुम्हें चीन जाना पड़े। आज तक किसी की समझ में आया? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है जी, काफी हो गई या है किसी के जहन में कोई सवाल बाकी? जी जी, वालेकुम
सलाम सर, मेरा सवाल है
इरशाद,
ये हसद जो है हसद के हवाले से है।
पार्डन, किसके लिए, हसद या हसब?
हसद, जेलसी, जेलसी, हसद,
हसद जी
जी, तो किसी को किसी की तरक्की से हसद होता है या किसी को किसी की एजुकेशन से होता है, तो माशरे में आम है ये।
एक जुमला सुन लें, एक जुमला मैं अर्ज कर देता हूँ, मैं अर्ज कर,
हमारे जहन में डाउट आया तो उससे कैसे बचा जाए,
मैं अभी अर्ज कर देता हूँ। एक जुमला मैंने कहीं पढ़ा, मुझे याद नहीं आ रहा ये जुमला किसने कहा है, जुमला ये है अल्लाह तवाना है इसलिए हासद नहीं है, जुमले की दाद दीजिए। असल में जेलसी का जज्बा अपनी कमजोरी से पैदा होता है, अगर आप तवाना होंगे आप जेलस नहीं हो सकते। हर वो बंदा जो दूसरे के मुकाबले में खुद को कमजोर देखता है, कमतर देखता है, वो हसद करता है, हाँ या नहीं?
जी सर, बजा फरमाया, लेकिन जैसे दूसरे लोग हसद,
या तो मैंने बजा फरमाया, ये लेकिन का क्या मतलब है?
आपने बिल्कुल सही बताया है।
आप मेरी बात पे जरा तफक्कुर करें, तवज्जो दें, क्या कि हसद की रूट पूछी, वो मैंने आपको अर्ज कर दी कि हमारी अपनी कमजोरी या जो बंदा हसद कर रहा है उसकी कमजोरी आड़े आ रही है, वो खुद को आपसे कमजोर देख रहा है, लिहाजा वो हसद में मुब्तला हो गया, और हसद तखरीब कहलाती है, वो आपका बुरा चाह रहा है कि वो चाहता है। देखे ना आप, एक बंदे के पास गाड़ी देखते हैं आप, रश्क करते हैं, आप रश्क करते हैं, रश्क का मतलब है आप ये चाहते हैं कि आपको भी ऐसी मिले, हसद ये कि इसके पास ना रहे, मुझे मिले ना मिले बात समझ आ गई।
और سر ابھی آپ نے کہ یہ چین کے حوالے سے بات کی کہ چین ہی کیوں نہ جانا پڑے, تو چین کے حوالے سے تھوڑا سا آپ, کیونکہ اس میں وہاں پر ٹپ تھی.
اصل میں اس دور میں چین اتنا ترقی یافتہ تھا, وہاں پہ جو لوگوں کی ساخت ہے نا ذہن کی, وہ انسپائریشن قبول کرنے والے لوگ ہیں. آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ کراکری جو تھی, کٹلری جو تھی, وہ چائنا سے اس وقت بھی امپورٹ ہوتی تھی. آپ سمجھ آیا کہ دیکھیں نا, ایک ترقی یافتہ ملک تھا نا, صنعت دیکھیں, ان کی تاریخ یہ, وہ لڑائی جھگڑے میں نہیں پڑتے, وہ چیزیں بنانے میں لگے ہوئے. غور کریں, شاباش, بالکل درست. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ بھئی وہ پیٹرن, علم حاصل کرو, علم حاصل کرو. زور کس پہ؟ علم حاصل کرنے پہ. یہ چین کی مثال دی تاکہ آپ کا ذہن اس طرف جائے کہ وہ کس طرح سے اپنے علم کا استعمال کریں. دیکھیں نا ابھی بات کی کیا, کہ علم شے کہاں ہے؟ آپ کے اندر ہے, آپ نے اس کو کھوجنا ہے, آپ نے اس کو کھوجنا ہے, کھودنا ہے.
جی سر,
تو جب تک یہ آپ اپنے اندر خود ایکسپلور نہیں کریں گے, جی, یہ علم شے تک رسائی ہوگی؟ ہم دوسروں کو کھودنے میں لگے ہوئے ہیں, تو یہ سے حسد کہتے ہیں. جب ہم دوسروں کے ترقی سے جلتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اصل میں ہم اپنی کمزوری کا اعتراف کر رہے ہیں.
ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ وہ دوسروں کی چیزیں جو ہے نا, وہ اثر انداز کہیں نہ کہیں ہو رہی ہوتی ہیں سراؤنڈنگ میں نا. جب سراؤنڈنگ سے نکلتے ہیں تو تھوڑا ذہن ہلکا ہوتا ہے.
شاباش, بالکل صحیح. ماحول جو ہے اسی سے نجات کا نام ہے, استغنا. اور استغنا کا لفظ غنا سے ہے, غنا نغمے کو کہتے ہیں, یعنی جب آپ فطرت کے ساتھ سر میں آ جاتے ہیں.
مطلب اس طرف توجہ نہ دیں کم سے کم اپنے ذہن میں, میں تو یا یوں یا قیوم پڑھتی رہتی ہوں.
جی یہ دیکھیں نا, یہ جو ہے جی ذہن کا اللہ کے ساتھ ربط میں رہنا, غنا یعنی کہ ایک سر ملانا. ٹھیک ہو گیا؟
جی جی سر,
بہت شکریہ. اللہ خوش رکھے, اللہ حافظ.
تھینک یو سو مچ سر,
موسٹ ویلکم, اللہ حافظ.